ओम शांति। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे। बट्टी में मजा आ रहा है? वेरी गुड। मधुबन में आने का सबसे सुनहरा मौका ये होता है कि हमारी स्थिति तो बनती ही है, लेकिन साथ साथ में बाबा के अनन्य रत्नों से मिलने का भी मौका मिलता है। तो आज ऐसे ही एक हस्ती हमारे सम्मुख हैं, निजार भाई जी। आप लोग निजार भाई को जानते हैं? कई लोग जो जानते हैं, एक बार तो सब लोग एक बार ताली बजा के निजार भाई का स्वागत कीजिए। निजार भाई का अगर परिचय दो ना तो आधा घंटा परिचय में ही लग जाएगा, इतना बड़ा है। पर फिर भी शॉर्ट में जरूर बताएंगे। निजार भाई बाबा के अनन्य बच्चे हैं। आप युगांडा अफ्रीका में आपका जन्म हुआ, लेकिन नैरोबी में आपने आपका सारा बिजनेस है। आपका बिजनेस इतना विस्तार है कि आप 60 कंपनीज के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, और विदेश में जैसे लगभग 40 देशों में बाबा के घर खोलने के निमित्त निजार भाई के बने हैं। और इंडिया में भी जो बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हुए हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट का नाम है फ्यूचर ऑफ पावर, खास करके जो टॉप क्रीम भारत के वीआईपीज होते हैं उनकी सेवा के निमित्त, जैसे बाबा बोलता है ना कि कुंभकर्ण उनको जगाने के लिए बाबा के बच्चे निमित्त बनेंगे, तो ऐसी बहुत विशाल सेवा करने के निमित्त निजार भाई जी हैं। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब ने पहले ही मेरे को बोला कि परिचय ज़्यादा आपको बड़ा नहीं करना है, बहुत सारा है, अवार्ड्स हैं, कितने कितने सारे बिजनेस हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, पर सार में ये है, अगर मैं सार में बोलूं, दिल का जो हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे कम लोगों को बनाया है। जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो खुद हमारे बीच में आए हैं। तो वेरी वेलकम भाई सर। आज के इस सेशन में आपसे थोड़े क्वेश्चन आंसर और आपके अनुभव लेंगे, ताकि हम सबको बहुत सारा जीवन में मार्गदर्शन मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले वैसे मैंने सुना है कि आप खुद को बहुत फॉर्चुनेट समझते हो, भगवान के हर बच्चे भाग्यशाली होते हैं, लेकिन हम अपने भाग्य को कई बार भूल जाते हैं। तो ये भाग्य के बारे में भाई साहब आप कुछ बताइए अपना, आप खुद को क्यों भाग्यशाली समझते हैं ऐसा?
थैंक यू। ओम शांति। पहला मैं आपको बता दूं कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी वोकैबुलरी बहुत शॉर्ट है, तो जब भी मुझे हिंदी में बोलना पड़ता है तो मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा चढ़ जाता है। लेकिन शैलू भाई ने जो मेरी तारीफ किया उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना।
नहीं भाई साहब, उस पर तो सबसे ज्यादा भरोसा करना है, मैंने तो कम बताया।
क्यों? कि हम लौकिक मीडिया के सामने जाते हैं तो उधर हमारा रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण के सामने कुछ भी नहीं है, एक ही रेफरेंस चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं बस। और बाबा के बच्चों के सामने हम ये तारीफ सब यूजलेस है ना? बाप के सामने आपने क्या अचीव किया है वो बोलो, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब फोगट। तो शैलू भाई ने जैसे बताया कि मैं मुझे बहुत फॉर्चुनेट समझता हूं, हम सब जो भी ब्राह्मण हैं वो सब उनको फॉर्चुनेट मानते हैं, क्योंकि हम करोड़ों में से इतना है थोड़ा, और उसमें से भी हम थोड़ा। तो पहले तो हमें भगवान मिल गया, कभी कभी नहीं सोचा था कि भगवान मिल जाएगा मुझे, आपको तो मुझे मालूम नहीं आपकी हिस्ट्री, लेकिन मेरी हिस्ट्री जो आप सुनो तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं क्यों फॉर्चुनेट मुझे मानता हूं। क्यों? कि जो ब्राह्मण का क्वालिटीज होता है उसका डायरेक्टली 180 डिग्रीज ऑपोजिट में था, स्मोकिंग, दारू, नॉन वेजिटेरियन फूड, 6 नाइट्स अ वीक पार्टिंग, ये मैं था अंटिल द एज ऑफ 48। दिस वॉज माई लाइफ। तो आप सोचो कि ऐसा ब्राह्मण कैसा बनेगा, है ना? डिफिकल्ट है ना, है ना? लेकिन मुझे टाइम लगा, मुझे करीबन 3 साल लगा ब्राह्मण बनने। मैं इंट्रोड्यूस हुआ तब से कि फाइनली मैं ऐसा कह सका कि ना, मैं ब्राह्मण हूं। इनको ऑलमोस्ट 3 इयर्स लगा। ये मैं बाबा का मिला उनके बाद भी। मैं मेरे फर्स्ट साल में 1992 में नवंबर 5 को मैं इधर आया था,
ज्ञान सरोवर में।
ज्ञान सरोवर में नहीं,
पांडव भवन
में, ओम शांति भवन में।
हाँ,
ओम शांति भवन। तब 1,000-1,500 मैक्सिमम आते थे वो हॉल में तब, और नीचे तलेटी में कुछ नहीं था। तब मेरी वो टीचर थी, निकी उनका नाम था, मेरी टीचर ने मुझे बहुत फोर्स करके भेजा इधर मधुबन, के तू जा उधर और बाबा को मिलना है। कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, लेकिन मुझे बोला था कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, उधर जाके तुझे मिलना है। तो मैं उधर आया और मुरली सुनी, बाबा की मुरली सुनी, 5 नवंबर 1992। लेकिन ये मुरली में तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ये जो दारी गुलजार बोल रही है वो भगवान है। वो तो मुझे बिल्कुल बकवास लगा, ये तो एब्सोल्युटली वाज नॉट। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ फ्रॉम द हार्ट। उसके बाद वो टाइम में बाबा ग्रुप्स को मिलते थे, तो मैं ग्रुप नंबर 6 था। ग्रुप नंबर 6 में हम 20-30-50 होंगे, मैं भूल गया हूं। तो बाबा तब सबको दृष्टि दे रहे थे और पूछ रहे थे, आप देखने आए हो कि मरने आए हो? तो मैं क्लियर था, हाँ मैं देखने आया हूं, देखने आया था मैं। तो ऐसा 2-3 दफा बाबा दृष्टि दे रहा था और पूछ रहा था। मुझे ऐसा लगा मेरे साथ ही बात कर रहा है, देखने आया हो कि मरने आया? मैंने बोला हां देखने आया। तो फिर बाबा ने पूछा कि इंस्ट्रूमेंट टीचर ने फोर्स करके तो नहीं भेजा? तो तब मुझे लगा हां वो फोर्स करके भेजा, इसलिए मैं आया हूं। तो बाबा ने बोला कि फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ है इसमें। तो तब बाबा ने बोला बस 1 मिनट में माइंड चेंज कर दिया, भूल तो नहीं किया। इतना बड़ा सौदा भगवान के साथ किया है तो ट्रस्ट योर इंटेलेक्ट के जो आपने किया वो सही किया। ये बाबा ने मुझे इतना खींचा, तब भी मुझे इसके बाद 2-2.5 साल लगा बिफोर आई सेड कि आई एम अ बीके। तो क्योंकि मेरी प्लानिंग इंटेलेक्ट है, लेकिन एवरीथिंग गोज स्लोली, वे रेड मीट देन व्हाइट मीट देन फिश देन शेल फिश ऐसा प्लानिंग. स्मोकिंग वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट टू गिव अप. एंड हम इतना दारू पीते थे विच वॉज नॉर्मल फॉर आवर काइंड ऑफ ग्रुप वॉज कंप्लीटली नॉर्मल के ऑल्सो टू स्टॉप दैट. लेकिन बाबा भी मदद करता है ना. बाबा कहता है हमें कि आपको प्योरिटी का अडॉप्शन करना, श्रीमद फॉलो करना, वो इजी नहीं है. बाबा नहीं हमारे साथ तो हम नहीं कर सकते हैं. बाहर वाले कोई नहीं कर सकते, लेकिन हमारे साथ बाप है तो बाप मदद करता है. मैंने एक दिन में दारू छोड़ दिया, एक दिन में. 19th of June 1992 was the last drink I had. तो ये सब इतना दादियां मिली, इतनी दफा बाबा मिला. बाबा भगवान हमारे साथ बाता करता है. भगवान ऐसा बोला था स्टेज के ऊपर.
भाई साहब आपको निश्चय कैसे हुआ सी बाबा में?
निश्चय तो फिर यू सी एज टाइम गोज बाय जैसा योगदान पड़ा ऐसा निश्चय आने लगा स्लोली. और जैसे जैसे मैंने श्रीमत अडॉप्ट किया ऐसा मोर एंड मोर फेथ आया. और इट टेक्स टाइम, मैंने बोला ना 3 साल लगा मुझे. और बाबा ने इतना मुझे खींचा तो भी इसके बाद, क्योंकि मैं टोटली दैट साइड में था. और सो स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप इट केम. एंड लेकिन स्लोली आई केम, बट देन फाउंडेशन वॉज स्ट्रांग सो आई वॉज एबल टू स्टे. सॉरी आई एम इंग्लिश बोल रहा हूं. ओके.
तो वैसे फिर क्वेश्चन आता है कि जो फाउंडेशन आपका बना उसका आधार स्लोली स्लोली श्रीमत और बाबा की याद था ऐसे. और फिर आप अव्यक्त बाप दादा से बहुत बार मिले होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी होंगे. तो ऐसा कुछ अव्यक्त बाप दादा से मिलन के समय पे आपको कोई टचिंग और कोई ऐसी विशेष अनुभूति हुई थी?
वो तो कॉन्स्टेंटली बाबा की टचिंग इज कॉन्स्टेंट. बाबा की टचिंग सिवाय कुछ नहीं होता है. देखो हमने फर्स्ट प्रोग्राम किया साउथ अफ्रीका, आपने बोला ना ये 40 countries. तो साउथ अफ्रीका में हम 2-3 थे. बाबा के पास एक दिन आए लाइन में एक शीट लेके कि बाबा हम, क्योंकि अफ्रीका में 53 countries है और सिर्फ 13 countries में बाबा का सेंटर था, 13 countries में. तो हमने बाबा को बोला कि ये जो 40 countries में अफ्रीका में जिधर बाबा का सेंटर नहीं है उधर हम 2 साल में सेंटर्स लगा देंगे. ऐसा आके हम बाबा के पास दे दिया है. सोचा नहीं था कि 40 countries में सेंटर्स फ्रॉम जीरो. कितनी कंट्रीज वो टोन थी, कितनी कंट्रीज में कितना कैसा कैसा प्रॉब्लम था, कितनी कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज थी जिधर उधर जाके हम ऐसा ही नहीं ब्रह्मा कुमारी का सेंटर सेट कर सकते, क्योंकि हमें ऑफिशियली करना था, वी वांटेड लाइसेंस. तो हमने देखा कि ये 2 साल में बाबा का पावर अफ्रीका ऊपर था. बाबा ने 14 दफा मुरली में ये सब अफ्रीका का कुछ ना कुछ बोला 14 times ये 2 साल में. और एवरी टाइम हम बाबा के पास मैप लेके जाते थे स्टेज के ऊपर. बाबा अभी इतनी कंट्रीज हुई, अभी इतनी हुई, अभी इतनी हुई ऐसा. और बाबा का कॉन्स्टेंट हमारे ऊपर सपोर्ट था. कितनी कंट्रीज में वॉर बंद हो गया, कितनी कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्रीज ने वो डेट डेट को क्या कहते
उधारी उधारी होती है,
उधारी, वो माफ कर दिया। और सब ऑन द होल अफ्रीका का इतना ऊपर आ गया वो दो साल में, क्यों कि भगवान का अटेंशन था अफ्रीका के ऊपर। हमने पहला सेंटर सेट किया तो आफ्टर सिक्स मंथ्स बाबा को बोला, उसके बाद सिक्स मंथ्स के बाद फर्स्ट सेंटर सेट किया, उसके बाद नेक्स्ट मंथ दो किया, फिर तीन किया, फिर चार किया, एंड में तो हम पांच पांच छह छह सेंटर एक मास में करते थे, क्योंकि बाबा का सपोर्ट था। तो फाइनली दो साल के बाद हम बाबा के पास गए कि इसमें एक आइलैंड साउथ क्यों में उसका नाम है, एक आइलैंड छोटी सी आइलैंड है, उसमें मेरा चले पॉपुलेशन 20,000 का है, तो ये आइलैंड रह गई हमको था, साउथ अफ्रीका करती है, साउथ अफ्रीका था, मॉरिशस करती है, तो ये एक आइलैंड रह गई। तो हम बाबा पास गया, बाबा को बोला, बाबा ये 40 कंट्रीज में ये एक आइलैंड साउथ टोम में रह गई। बाबा ने बोला कि इनको ऐसा सोचो कि ये आपका ब्यूटी स्पॉट है, कि एक आपने दे दिया उनको रिगार्डेड एज ए ब्यूटी स्पॉट। तो फिर आपको मालूम होगा कि हमने बाबा की परमिशन थे एक 200 किलो का अफ्रीका शेप का केक बनाया, बाबा के सामने ले गए थे, और बाबा ने ऐसा काटा था वो केक। तो ये ऐसा सब अफ्रीका का प्रोजेक्ट, वो जो हम पहला प्रोजेक्ट किया, इसमें बाबा का सपोर्ट के बिना एब्सोल्युटली वो नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल कि 40 न्यू कंट्रीज में सेंटर एस्टैब्लिश करना वॉज इम्पॉसिबल टू डू। किसी कंट्रीज में लाइक जिबूती एक मुस्लिम कंट्री है, उसमें हमने एस्टैब्लिश किया सेंटर, दो साल वो सेंटर रन किया, एक बीके निकला, एक दो साल की बात, लेकिन वी स्टिल रन द सेंटर, लेकिन सेंटर स्टिल एस्टैब्लिश ऑफिशियली स्टैम्प्ड। तो जो बाबा मैंने देखा है, जो टचिंग की आप बात करते हो ना, कि बाबा की हेल्प बिना कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, और बाबा की हेल्प होती है तब हमको मालूम भी पड़ता है कि इसमें बाबा ने ये किया।
करेक्ट,
हमें सबको मालूम पड़ जाता है ना कि इसमें बाबा का हाथ है, नहीं तरी कभी नहीं होता। तो ऐसा कितना हमें एग्जाम्पल्स मिलता है कि ये हमारा बाबा, लेकिन हम इनको लास्ट मिनट बाबा कहते हैं, ये लास्ट मिनट बाबा है, कभी पहले से नहीं करेगा। आप सब कोशिश कर लो, सबको यूज कर लो, सब में फेल हो जाओ, फिर लास्ट मिनट वो कर देगा। लास्ट मिनट
निजर भाई, ये तो नया सब दे दिया, लास्ट मिनट बाबा।
हाँ, हे वो लास्ट मिनट बाबा ही है, हम इनको वो ही कहते हैं। कितना हमें एग्जाम्पल भी है कि वो लास्ट मिनट करेगा, उसके पहले नहीं करेगा।
जैसे निजर भाई, आपका इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर था, आपका बिजनेस था इतना, तो उसमें भी बाबा आपको मदद करता था बिजनेस के, जैसे उसको रन करने में।
डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है, हम ऐसा नहीं सोचते। हम जो ऐसा करते हैं कि हम सेवा में जाते हैं और बाबा को कहते हैं मैं उधर सेवा का ध्यान रखो, आप इसका ध्यान रखो, तो वो हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखेगा। लेकिन ऐसा हम ऐसा नहीं कह सकते बाबा ये साल 50 करोड़ बना दो तो वो जी
वंडरफुल।
जी
इनका पूछना है, जैसे अफ्रीका में सेंटर्स खोले तो बहनें वहां की थी या इंडिया से लेके गए थे?
नहीं, हमने ये एक चीज इम्पोर्टेंट किया कि नॉट ओनली बहने बट भाइयों भी हमने उधर से क्रिएट किया। हमारे पास इतना हैंड थे नहीं, लेकिन हमने क्रिएट किया। हमने एक रिट्रीट बनाया, सबको इनवाइट किया सारे अफ्रीका में से कि आप आओ और हमें डोनेट करो टाइम। किसी ने 2 मास दिया, 3 मास दिया, 6 मास दिया, ऐसा सबने टाइम डोनेट किया। फिर हमें सबका ट्रेनिंग किया, क्योंकि उसको सेंटर चलाना, पहले तो उसको ब्राह्मण बनना है प्रॉपर,
करेक्ट,
और उसके बाद प्रैक्टिकली सेंटर कैसा चलाना है उसको वो भी सिखाया हमें कि वो प्लग कैसा चेंज करते हैं, यू नो, ये सब सिखाना पड़ा उनको। और ट्रेनिंग किया हमने, कितने मास की ट्रेनिंग किया। फिर वो सब अभी भी वो जब तब का जो है हैंड्स अभी भी है अफ्रीका में सर्व कर रहे हैं। कितना साल हो गया वो 2004 से? तो वेरी गुड क्वेश्चन। ये है ना, क्रिएट किया। और बाबा ने कितनी दफा बोला सबको कि ये इनको सर्व कर्नाटका बोलाओ, सर्व ऑस्ट्रेलिया बोलाओ, सर्व अफ्रीका वाले जो करते हैं ऐसा करो। बाबा ने बहुत दफा बोला कि ये करो, हैंड्स क्रिएट करो, ऐसा नहीं कि दूसरी कंट्रीज में से हैंड्स ले जाओ। वेरी गुड क्वेश्चन।
निजर भाई, आप बाबा के पुराने बच्चे हैं, आपने बड़ी दादी को भी देखा है और यज्ञ को वैसे भी देखा है कि जैसे आज हम देखते हैं बहुत रिसोर्स हैं, लेकिन उस समय पे रिसोर्स नहीं थे। तो उस समय पे बड़ी दादी के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस था, वो कैसे, यू नो,
दादी प्रकाश मन। ओ लवली सोल, ब्यूटीफुल सोल इज दादी प्रकाश मणि। दादी प्रकाश मणि वॉज, यू नो, वो सोल ऐसी थी कि आप उनके सामने जाओ ना तो उनको मालूम पड़ जाता है कि आप क्या करने गए उधर। परसेप्टिव थी, इतनी परसेप्टिव थी, ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल, और ताकत वाली थी, इतनी जुड़ावर थी। आपको ये किधर भी कोई भी मीटिंग में जाओ, वो जो डिसीशन देती है, जो चर्चा कराती है, वो वॉज जस्ट परफेक्ट। मैं उनका चेला हूं रियली, क्योंकि वो उसके पास मैंने बहुत सीखा है और उसने मुझे टाइम भी दिया। वो दादी प्रकाशमणि वॉज, मैंने इधर घर बांधा तो मुझे बोला आपको इधर नहीं रहना है, ये आपके लिए नहीं है, ये सर्विस के लिए है, आपको फॉरेन में ही रहना है, इधर नहीं रहना है। विदाउट आस्किंग, विदाउट एनीथिंग, शी जस्ट टोल्ड मी दैट इन 1 मिनट, एक मिनट में बोल दिया कि ये आपका इधर रहने के लिए ये घर नहीं है, ये सर्विस के लिए घर है, आपको सर्विस बारी करनी है, इधर नहीं है आपका। तो दादी प्रकाशमणि वॉज जस्ट अ ब्यूटिफुल सोल, देयर वॉज, वो कितनी मीटिंग्स में भी हम अटेंड करते थे, वो जब आती थी कोई भी चीज में, वो 1 मिनट में डिसीशन देती थी। शी वॉज जस्ट ब्यूटिफुल सोल, सो और क्लियर, ऑलवेज क्लियर। और इसमें यू नो, सब दादी का हम देखते हैं, हमने देखा है कि सब दादी का डिफरेंट स्पेशलिटीज होती है। और पर दादी प्रकाशमणि का यह था, परसेप्टिव, बहुत जोरावर और डिसीशन मेकर, कभी वो फॉल्टर नहीं होगी, 1 मिनट भी स्ट्रेट डिसीशन दे देंगी 1 मिनट में। तो वो जिधर भी होंगी अभी, वो बहुत लकी हैं वो लोग कि उनको ये मिली।
बिल्कुल भाई साहब, दादी जानकी जी, उनका तो आपका पर्सनल, जानकी दादी से पर्सनल इंटरेक्शन हुआ है, बहुत पालना ली है, बहुत सारी सेवाओं में आपको आगे रखा है। तो जानकी दादी के बारे में भी, उनका आपका पर्सनल इंटरेक्शंस, उनकी विशेषताएं, उसको भी आप हमारे साथ थोड़ा।
दादी जानकी की एक शॉर्ट स्टोरी बता दो आपको। मेरी जो टीचर थी निकी, उसने मुझे बहुत जोर से बोला कि मैं लंदन जाके दादी जानकी को मिलूं ग्लोबल कॉरपोरेशन हाउस में। और मैंने जस्ट कोर्स कंप्लीट किया था और मैं बिल्कुल नया था इन इन ज्ञान। और तब मैं ब्रह्मा कुमारीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, क्योंकि हम व्यापारी लोग किसी को ट्रस्ट नहीं करते। तो मैंने ये फर्स्ट ईयर में आई वेंट टू 33 सेंटर्स मैंने विजिट किया अनअनाउंस्ड, पेरिस, मायामी, क्योंकि आई ट्रैवल अ लॉट, सो मेरे लिए इजी था। जिधर भी नई कंट्री में मैं गया, सेंटर में फोन करके मैं पहुंच गया देखने के लिए कि ये सब जगह में कैसा चलता है, क्या चलता है। तो एक कंपनी है डन एंड ब्राड स्ट्रीट, वो फर्म ऑफ इन्वेस्टिगेटर अकाउंटेंट है। तो आप समय जो बिजनेस वाले उनको मालूम होगा डन एंड ब्राड स्ट्रीट। सो मैंने इनको भी एम्प्लॉय किया कि आप मुझे ब्रह्मा कुमारी का इन्वेस्टिगेट करके बताओ। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू माई स्टेट ऑफ माइंड। सो ये उसने इतना रिपोर्ट दिया था मुझे ब्रह्मा कुमारी। तो तब ये दादी जानकी और दादी प्रकाशमणि वर द जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर। सो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट तो था उनको मिलने के लिए, लेकिन निक्की ने मुझे बहुत जोर से बोला कि लंदन जाना ही है और ग्लोबल कॉरपोरेशन में दादी जानकी को मिलना है। तो मैं गया शोफर ड्रिवन कार लेके, क्योंकि तब ईगो अभी था बहुत, मेरा भारत से बड़ा मेरा ईगो था तब। तो दादी जानकी के पास गया और इसके पहले वो सुदेश दीदी उधर बैठी थी वो, तो वो उसने मुझे दृष्टि दिया। तब तो दृष्टि खुद मालूम नहीं था, तो इसने मुझे दृष्टि दिया तो सुदेश दीदी की एक आंख खुली रहती है, एक आंख बंद। तो मैंने सोचा ये इनके सामने मैं हंसू, मैं देखू, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो उसके बाद दादी जानकी आए, तो दादी जानकी ने मुझे पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हो। तो मैंने क्विक एज अ फ्लैश मैंने बोल दिया कि पीस ऑफ माइंड। तो दादी मुझे कह रही है कि हम सब अभी भिखारी बन गए, भीख मांगते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैंने सोचा ये बूढ़ी मुझे भिखारी कह रही है। तो मेरा ऑलरेडी टेम्पर तो चल गया था इशर। फिर उसने मुझे बोला कि आप कल क्लास में आओ। तो मैंने बोला आपकी क्लास कितना बजे होती है। तो जी क्या कहिए,
दादी ने जो जैसे आपने दादी को मन में सोचा ना कि ये बूढ़ी मेरे को क्या समझाएगी, तो वो उन लोगों को थोड़ा सा बोल रहे हैं एक बार दादी ने क्या बोला उस हिसाब से।
Anyway. क्योंकि इसने दादी ने बोला ना कि तुम हम सब भिखारी बन गए, भीख मांगते, हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, ये चाहिए। सो इसलिए
आपके थॉट आया वैसा।
हाँ, क्योंकि मुझे कह रही थी। तो उसके बाद उसने बोला आप क्लास में आना। मैंने बोला क्लास कितना बजे, तो मेरा ख्याल उसने बोला होगा 5:30-6। तो मैंने बोला नहीं नहीं वो इट्स टू अर्ली फॉर मी, क्योंकि तब तो अजीब मैं दारू पीता था, तो सुबह 5:30। तो तो दादी मुझे कह रही है कि मैं आपको गाड़ी भेजूंगा आपको ले जाए। मैंने बोला नहीं नहीं गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास गाड़ी है। अच्छा तो आपको आलस हो रही है, दादी ने बोला। मैंने सोचा पहला मुझे भिखारी कह रही है तो मुझे उधर से उठ के चला ही जाना था, बिकॉज मुझे उधर रुकना ही नहीं था एक मिनट। फिर मैंने गुड बाय करके मैं तो चला गया फास्ट में। फिर दादी ने मुझे वापस बुलाया, क्योंकि वो थर्सडे था तो दादी ने भोग था होएगा, तो दादी ने मुझे मैंगो दिया एक आम। तो मैंने सोचा कैसी चीज है आम देने, मैंने गाड़ी में जाके मेरा ड्राइवर को दे दिया क्योंकि तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने मेरी होटल में वापस, तब वो फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, तब 92 की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं होटल में जाके मेरी टीचर को फोन किया कि ये बूढ़ी के पास कभी नहीं भेजना मुझे वापस। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था दादी जानकी के साथ। लेकिन मैं जो भी कुछ जो हूं तो ये मैं दादी जानकी के वजह से हूं, क्योंकि दादी ने मुझे इतना पालना दिया है, इतना पकड़ा है, इतना मुझे लिटरली मुझे लेसन्स दिया है और इतना टाइम दिया है मुझे। और जब हम कोई भी प्रोग्राम करते थे, फ्यूचर ऑफ पावर जब हमने शुरू किया, तो दादी ने मुझे कमिटमेंट किया था कि ये प्रोग्राम में मैं आऊंगी। 10 प्रोग्राम्स जो हमने इंडिया में किया, वो एक एक प्रोग्राम में वो आई थी, एक एक प्रोग्राम। और उसने बहुत टाइम का भी भोग दिया है और मुझे बहुत बहुत सिखाया है। जो मैंने दादी जानकी के पास सीखा है, वो कोई और के पास पेशेंस नहीं है कि इतना मुझे सिखाए। सो मैं दादी जानकी को मिस भी बहुत करता हूं, क्योंकि वो कान भी खींचती थी लेकिन लव भी देती थी, बहुत प्यार देती थी और पालना देती थी। तो मैं दादी को कहता था दादी आप जाओगे तो रोना पड़ेगा, तो वो उसने बोला नहीं नहीं हम सब साथ जाएंगे, फिक्र नहीं करो। लेकिन मैं रह गया, वो तो चली गई तो वो ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक फेवरेट दादी है, लेकिन वो बहुत क्लोज है।
बस आपने उनसे क्या क्या सीखा थोड़ा सा, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दादी जानकी?
दादी एवरीथिंग, आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम दादी, एवरीथिंग। देखो एक दफा मैं उसको ऑक्सफोर्ड में मिला, तो उसने बोला कि आप है ना, हमने डिसाइड किया कि हम कल वापस आएंगे ऑक्सफोर्ड। बोला ठीक, तो मैं कल नहीं परसों हम मिलेंगे, तो मैं परसों वापस गया। तो दादी ने बोला आप कल क्यों नहीं आए? मैंने बोला हमने डिसाइड किया था परसों, तो मैं आज आया। नहीं मैंने, मुझे आपकी जरूरत थी कल, मैंने आपको मैसेज भेजा, आपकी लाइन क्लियर नहीं है, ऐसी थी वो। उसने बोला आपकी लाइन क्लियर नहीं थी, आपको मालूम पड़ना चाहिए कि मैं आपको ढूंढ रही थी कल। तो दादी ऐसा एग्जाम्पल्स देती थी हमें, कितनी दफा ऐसा टेस्ट करती थी। और दादी जानकी वो बोलने में बहुत होशियार थी, और कितना एग्जाम्पल दिया है, कितनी दफा हमने, मैं क्वेश्चन लिख के जाता था दादी के पास पहले पहले, वो एक एक क्वेश्चन का जवाब देती थी कि इनका क्या उनका, बहुत बहुत क्वेश्चन था। तो ये सब आप समझ लो कि मोर देन 50% मैं जो सीखा हूं वो दादी जानकी के पास सीखा हूं। वो उसने बहुत पालना दिया है मुझे, बहुत लेसन्स दिया है। और उसके साथ में कितनी जगह गया हूं, और कितनी जगह वो भी आई है जब इधर था अफ्रीका में, वो आई है एटलीस्ट three times that I know. तो या क्या बताओ आपको कितना सिखाए, बहुत सिखाए उसकी बात. टू मच. दादी जानकी सिवाय मैं कुछ भी नहीं हूं.
दादी की ऐसी कौन सी विशेषता होती थी मैं सब उनकी स्पेशलिटीज जो मतलब आपको आज भी आप उसको याद करते हो? कोई तो एक विशेषताएं होती है ना, तुरंत व्यक्ति भूल जाता है लेकिन उनकी विशेषताएं ऐसी होती हैं वो पॉप अप होती हैं ऐसा.
सो वंडरफुल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आई रिमेम्बर फ्रॉम दादी जानकी. राइट नाउ आई कांट रिमेम्बर, आई कांट थिंक अबाउट इट, बट लॉट्स ऑफ थिंग्स.
दादी का जैसे हमने देखा कि वो ज्ञान स्वरूप बहुत थे, ज्ञान प्रैक्टिकल, वैसे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज थी, लोगों से मिलना, तो वो अपनी बीमारी को भी भूल जाते थे एकदम. उनमें जैसे होता है ना जोश आ जाता था ऐसा. ये दादी का बहुत सेवा के लिए और ज्ञान के लिए बहुत डेडिकेशन ऐसा था.
बहुत डेडिकेशन, बहुत. कितनी दफा तो वो ऑलमोस्ट मर गई थी, कितनी दफा, और ऑल ऑफ अ सडन नेक्स्ट डे ब्राइट अप. क्योंकि बाबा इनको बहुत मदद करता था, क्योंकि इनको टाइम, इनका टाइम नहीं था जाने का. ब्यूटीफुल दादी.
भाई साहब आपने फ्यूचर ऑफ पावर सेवा के बारे में जैसे बताया, तो आप उसमें एक जैसे आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी को आप फैशनेबल, यू नो, एक आप ये कॉन्सेप्ट लोगों को बताते हैं कि हाउ कैन वी मेक स्पिरिचुअलिटी एज ए फैशन, उसके पीछे आपका कॉन्सेप्ट क्या रहता है, आपकी सोच क्या रहती है?
देखो फ्यूचर ऑफ पावर, ये फर्स्टली इज फॉर अट्रैक्टिंग पीपल हायर कैलिबर. सेकंड, कि जो भी हमने इंडिया में किया हम डीमिस्टिफिकेशन ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज, ब्रह्मा कुमारीज को डीमिस्टिफाई करना. देखो जब हमने ये शुरू किया तो लोग ब्रह्मा कुमारी से डरते थे,
खास करके बड़े लोग जो होते थे वो.
हाँ, बिकॉज किसी के साथ में मीटिंग में गया ऐसा, मेरे साथ दो ब्रह्मा कुमारी थी तो उनको मैं पहचानता था, लेकिन ब्रह्मा कुमारी मेरे साथ थी तो वो उसको लगा मैं उसके पास पैसा लेने गया हूं. रियली ही सेड के देखो ऐसी चीज मैं नहीं करता, आपको मेरा पीआर के साथ बात करना. मैंने बोला आपको ऐसा है मैं आपके पास पैसा लेने आया हूं. बोलता है हाँ. मैंने बोला नहीं, लेकिन डिफरेंट व्यू पॉइंट अबाउट ब्रह्मा कुमारी, यू नो, कि ब्रह्मा कुमारी विल नॉट ईट आउट, विल नॉट, इट वॉज वेरी स्ट्रांग और दे रियली दे वर. और ब्रह्मा कुमारीज भी किसी के पास इनविटेशन देने जाती थी तब तो ऐसा कहती थी प्लीज प्लीज आप हमारा प्रोग्राम में आओ. तो हम उसको कहते थे ऐसा नहीं जाओ, वो हमारे लिए नहीं आते, वो उनके बेनिफिट के लिए आते हैं. उनको हम ऐसा बताएं कि आपके बेनिफिट के आप आते हैं, हमारे बेनिफिट के लिए नहीं आओ. व्हाई वुड यू डू मी ए फेवर बाय कमिंग, so don't come if you are coming to please me. So demystification of Brahma Kumaris was very important then, because after a while when centers usne dekha ki ye to VIP aa rahe hai, first time humne first program kiya the people like Ramoji Rao came. Ramoji Rao ko 20 years they were trying to get him. Ramoji Rao not only came to our program but he wore white. And he went to the center, met with Dadi Janki. And after that, he's still in connection with us.
Yes.
So, you see, there are lots of aisa.
Hindi.
Oh, sorry. Sorry. Achha, aap mujhe remind karo. So, aisa bahut logo hain, ke wo Brahma Kumaris mein aane shuru kiya. To ye इम्पोर्टेंट था हमारे लिए कि इसलिए हमने ये मैं हिंदी सीख गया. इम्पोर्टेंट था. मैं देखो मेरी टूटी फूटी है लेकिन हम उसको पूछ रहे थे कि आपको टूटी फूटी हिंदी सुननी है कि इंग्लिश, वो बोलते टूटी फूटी हिंदी में बोलो, कोई बात नहीं। तो ये टूटी फूटी हिंदी जैसे हम बोलते रहे, ऐसा मोर एंड मोर पीपल बिकेम अट्रैक्टेड। और हमारा पर्पस ये था कि ये सबको हम सिखाएं कि ब्रह्मा कुमारीज इज एन इंस्टीट्यूशन, के उनका काम ये है कि हमको सॉफ्ट पावर इंट्रोड्यूस करें। सॉफ्ट पावर बाबा ने भी हमें बोला था फर्स्ट टाइम जब हमने शुरू किया ये फ्यूचर ऑफ पावर, कि देखो फ्यूचर ऑफ पावर की टेरेन, क्या कहते हैं, जमीन बहुत कठिन है। आप जाओ मुस्कुरा के, ठंडा दिमाग रखिए, मान दे के आगे बढ़ो। तो हम एक एक सेंटर में जाके सेंटर के हेड को हम कहते थे बाबा ने ये हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, तो प्रोग्राम के बाद हम आपके पास सर्टिफिकेट लेने आएंगे कि ये तीन चीज हमने किया है कि नहीं। बाबा ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया था और ये बोला था कि एक एक सेंटर में जाओ, सबको इकट्ठा करके बाबा के रूम में बैठो बिफोर द प्रोग्राम एंड आफ्टर द प्रोग्राम। बाबा ने इतना स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया था। एक दफा मैं हमारा इंदौर का प्रोग्राम के बाद मैं स्टेज के ऊपर गया, बाबा को बोला बाबा थैंक यू, इंदौर का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। बाबा ने बोला ये तो ठीक है, आप बाप को थैंक यू कर रहे हो, लेकिन ये तो बाप का प्रोग्राम है, ये तेरा प्रोग्राम नहीं है, मेरा प्रोग्राम है। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप बाबा ने हमें डायरेक्ट किया। देखो नरेंद्र मोदी हमारे प्रोग्राम में आया, ऑपोजिशन लीडर आया हमारे प्रोग्राम में, ऐसे कितना लोग, कितना साइंटिस्ट, कितना वीआईपी, सब लोग प्रोग्राम में आए, क्योंकि ये बाबा का पुल था। बाबा ने साफ साफ बोल दिया ये तेरा प्रोग्राम नहीं, मेरा प्रोग्राम है, तो मैं जैसा कहता हूं ऐसा कर तो सक्सेस होएगा। तो अभी तक हमें फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया, हमने ये नेपाल में किया, फिलीपींस में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, अमेरिका में किया, तो ये सब कंट्रीज में हमने ये डुप्लीकेट किया, लेकिन मैक्सिमम हमने भारत में किया। और अभी भी हमने स्टॉप नहीं किया, लेकिन बाबा ने ऐसा बोला हमें कि जब हमने 32 प्रोग्राम्स कंप्लीट किया, तब बाबा ने बोला कि ये आपका ओरिजिनल लक्ष्य था कि आपको 32 प्रोग्राम्स करना है। अभी आप किसी के पास जाओ नहीं कि प्रोग्राम करो, वो जो आपके पास आए और उनको रियली प्रोग्राम करना है तो फिर आप देखो आपको करना है कि नहीं। तो भी इसके बाद हम 72 सिटीज में हमने प्रोग्राम कर दिया एट देयर रिक्वेस्ट, ये कि हमने ये प्रोग्राम किया है। तो इसके बाद क्योंकि जो हम कहते हैं कि सॉफ्ट पावर, तो लोग कहते हैं ओके सॉफ्ट पावर ठीक है, आप ये डिस्क्राइब करते हैं सॉफ्ट पावर, लेकिन रियली क्या है सॉफ्ट पावर? तो ये सॉफ्ट पावर का एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक कंपनी शुरू की है, उनका नाम है ब्लू कंपनी प्रोजेक्ट। ये ब्लू कंपनी को हम कंपनीज को इनवाइट करते हैं कि आप ये जुड़ो ये ब्लू कंपनी में और कंप्लीटली करप्शन फ्री बन जाओ। तो अभी तक 500 कंपनी हमारे अफ्रीका में जुड़ गए ऑलरेडी करप्शन फ्री, और हमारी जो कंट्रीज है केन्या, युगांडा, तंजानिया, ये सब कंट्रीज बहुत करप्ट है, इंडिया से ज्यादा करप्ट। तो ये हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। जब ये जमशेदपुर में हमने ये टाटा का स्टील का सीईओ के साथ ये बोला कि हम ये शुरू करते हैं अफ्रीका में, तो उसने बोला कि जब आप 1000 कंपनी पहुंच जाओ तब हमको ये इंट्रोड्यूस करो इंडिया में, तो ये टाटा इंडिया में ये फ्यूचर ऑफ पावर का ये ब्लू कंपनी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो हमारी उम्मीद है कि ये एंड ऑफ दिस ईयर तलक हम ये 1000 कंपनीज पहुंच जाएंगे। तो फिर मैं जाऊंगा रतन टाटा के पास कि वो इंडिया में ये शुरू करें। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप लेते हैं कि हम आगे बढ़े, कि लोग को हम बताएं कि सॉफ्ट पावर का मीनिंग क्या होता है, कि करप्शन फ्री आपको बिजनेस करना ये सॉफ्ट पावर है। और हो सकता है कि नहीं, क्योंकि जितनी कंपनी का मैं चेयरमैन हूं वो सब ब्लू, सब ब्लू। तो ये भी एग्जाम्पल है ना एक, कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि करप्ट कंट्री में बिना करप्शन आप सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि हमारी पास तीन कंपनी है पब्लिकली लिस्टेड विच इज नंबर वन इन द होल कंट्री, तो करप्शन बिना वी कैन स्टिल बी नंबर वन। तो फ्यूचर ऑफ पावर का ये एम था, और अगेन बाबा की मदद सिवा ये नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता था। और बाबा ने ये प्रोजेक्ट का ओनरशिप ले लिया कि ये मेरा है, तेरा नहीं है। और ऐसा ही हुआ है ये प्रोजेक्ट एक एक कंट्री में, एक एक सिटीज में, जिधर भी हम गए हैं उधर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। और अभी भी कितने लोग फ्यूचर ऑफ पावर द्वारा बीके बने हैं और एसोसिएट भी बने हैं।
बहुत सारे लोग बोलते हैं निजर भाई जब जाते हैं बड़े लोग, हमने अटेंड किया और
और रिसेंटली हमने फ्यूचर पावर ने एक प्रोग्राम किया हाउ टू लर्न मेडिटेशन इन वन आवर। वन आवर में सीखना मुश्किल है, लेकिन इट्स अ कम ऑन, हम इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं।
और ये ऑनलाइन था ना निजर भाई?
हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन किया। और हमने ये इसका टीचर ढूंढा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो यू कैन चूज योर टीचर फ्रॉम मायामी इफ यू वांट, और फ्रॉम हैदराबाद, विच एवर यू वांट। सो लोग ने कितना डिफरेंट डिफरेंट चूज किया के अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज। सो दिस इज, ये भी फ्यूचर ऑफ पावर है, फ्यूचर ऑफ पावर का प्रोग्राम है। क्यों? कि हमारे पास अभी डेटाबेस है 3,500 पीपल हु हैव अटेंडेड फ्यूचर ऑफ पावर प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो वी आर कनेक्ट, इनके साथ हमारा कनेक्शन है, हम इनको रेगुलरली कनेक्ट करते हैं, हमारी वेबसाइट है, हम उनके साथ रेगुलरली उनको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। तो ये इनके लिए था, ये वन आवर अट्रैक्शन इनके लिए था कि वो सीखे कि मेडिटेशन तो वन स्टेप है ना। मेडिटेशन सबको अट्रैक्शन लगता है कि एक घंटे में सीख जाऊंगा मैं, ओके आई विल ट्राई, है ना।
निजार भाई टाइम जैसे हो रहा है, एक दो क्वेश्चन और हैं कि रिसेंटली जैसे आप टाइम को देखते हैं, दुनिया की जो सारी स्थितियां हैं उसको देखते हैं, तो आप इस समय कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? आप व्हाट इज योर लाइक स्टेट, पर्सनल बाबा से कैसे इंटरेक्शन करते हैं, माइंडसेट कैसे रखते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा।
यू नो लेटली बाबा ने कितनी दफा बोला है लेटली, और आज भी के व्हाइल्स्ट सिटिंग एंड मूविंग अराउंड, वॉकिंग अराउंड, रिमेंबर मी, मुझे याद करो। जब आप आपका कोई भी काम करते हो तब, नॉट जस्ट सिटिंग बट सिटिंग एंड मूविंग वॉकिंग,
चलते फिरते बाबा,
चलते फिरते, हाँ चलते फिरते, थैंक यू, चलते फिरते मुझे याद करो। एंड मोर मैं ये बहुत कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये हैबिट हमें इतना बर्थ से हम बाबा को भूल गए हैं कि अभी ये हैबिट हम इधर बैठ के तो बाबा को याद कर सकते हैं, लेकिन जब व्हेन वी आर डूइंग थिंग्स, जब हम कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब बाबा को याद करना, ये मैं प्रैक्टिस, मैं उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूं। अभी हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ये परफेक्ट करना है। आप में से भी बहुत ट्राई करते होंगे, क्योंकि ये है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट, रिसेंटली बाबा ने बहुत दफा मुरली में बोला कि ये करो, तो मुझे ये परफेक्ट करना है कि हम बाबा को ऑल द टाइम याद करें। कैसा करें हम जब भी, क्योंकि हम, मेरी जब बहुत मीटिंग्स हीट अप हो जाती है, बहुत हीट अप हो जा, तो मैं कंफर्ट ब्रेक देता हूं सबको 5-10 मिनट की, और फिर मैं बैठकर पीस का वाइब्रेशन भेजता हूं। हम कर सकते हैं ना, ये हम सब करते हैं पीस का। जो वापस आते हैं वो लोग सब मीटिंग में, तो सब लोग का चेंज हो जाता है, या वी वर टू हीटेड, अभी शुरू करें वापस ऐसा हो जाए। तो ये जो हमारा, दैट इज आवर एबिलिटी, कि जब भी हम बाप के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा पावर कितना बढ़ जाता है। वी कैन डू सो मेनी थिंग्स। तो ये एक है, ये हमें ये परफेक्ट करना है कि जब भी हम कुछ भी करते हैं तो एट द सेम टाइम, ये जो कर्मयोगी भी एक है कि हम काम करते हैं तब भी बाबा को याद करें, लेकिन एटलीस्ट वॉकिंग एंड मूविंग अराउंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तब वी कैन रिमेंबर बाबा। लेकिन कर्मयोगी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज परफेक्शन, बिकॉज एज द एयर, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, जैसे कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड बहुत बुरी हो रही है अभी, आप तो सब देख रहे हो, क्योंकि ये कलयुग का एंड है। अभी हमें मालूम है कि ये अभी बिल्कुल एंड है, ऑल द चिन्हों अभी है कि ये एंड है। तो जैसे जैसे सिचुएशन वर्स एंड वर्स हो जाए, होता रहेगा, तो फिर हमें टाइम थोड़ा मिलने वाला है कि हम बैठ के एक घंटा बैठे
करें।
सिचुएशन ऐसा नहीं होने वाला है कि हमको टाइम मिले कि हम बैठे। तो मोर एंड मोर हमें ये कल्टीवेट करना, ये मेरा इंप्रेशन है कि मोर एंड मोर हमें ये कल्टीवेट करना पड़ेगा कि जब व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, हम कुछ कर रहे हैं, तब बाप को याद करें। जब हम काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब ये प्रैक्टिस करनी है हमें, क्योंकि सतयुग में तो हमें मालूम है कि हम सब सोल कॉन्शियस होंगे, लेकिन बाप नहीं होएगा तब। हम एक दूसरे को, वी नो कि वी आर सोल्स, लेकिन तब बाप को तो याद नहीं करना है। अभी तो ये इंपॉर्टेंस है कि बाप को याद करना है। बाप बिना कुछ भी नहीं है, है ना। सो ये प्रैक्टिस मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। थैंक यू।
आप लोगों को भाई साहब का अनुभव अच्छा लगा, एक बार और ताली बजाइए फिर। थैंक यू निगर भाई, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ऐसी बातें आप, ये निगर भाई बोलते हैं कि टाइम 15 मिनट्स और कर सकते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं
जी।
उनका क्वेश्चन है कि आपको ऐसे कब लगा कि अब ये चीजें मेरे को सरेंडर करनी है गॉड पे, आपके इंटेलेक्ट में, मतलब ऐसा कब निश्चय?
मुझे सरेंडर होना है।
एंड व्हाट वाज द रीजन?
मैंने बोला ना कि एटलीस्ट 3 साल लगा मुझे, ये 3 साल में इन आउट था। एक दिन मुझे बहुत स्ट्रांग लगे कि ये मैं इधर ही रहना है, एक दिन मुझे लगे कि मैं क्या कर रहा हूं इधर, क्योंकि मुझे कुछ भी कॉमन में नहीं था ये सब वीकेंड्स के लिए, कुछ भी कॉमन में. तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली ऐसा इन आउट. और फिर जैसा मैं श्रीमद भी फॉलो नहीं करता था, तब है ना बाप बाप को मालूम है कि मैं व्यापारी हूं. वो मैं सच कहता हूं आपको, मेरे साथ वो डील करता था,
बाबा डील करता था.
आप मानो ना मानो या रियली
निजार भाई कैसे डील करता था?
ऐसा कि देखो एक बड़ा प्रॉब्लम आ जाए मेरे सामने, फिर मैं सोचू ये कैसा मैं करने वाला हूं. तो मुझे ऐसा सोच आए कि कल से रेड मीट छोड़ दे, ये प्रॉब्लम हो जाएगा.
अच्छा, रेड मीट छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा. ओके,
तो मैंने सोचा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है. ये रेड मीट मैंने कल से छोड़ दिया, ये प्रॉब्लम चला गया. रियली रियली. तो ऐसा कितनी दफा बाबा ने ऐसा भी किया मेरे साथ, राइट? अभी तब तो मुझे इतना मालूम भी नहीं था, वो बाप की श्रद्धा भी नहीं थी. अभी तो मुझे मालूम है वो कौन है, वो क्या कर सकता है. तब तो मालूम भी नहीं था, लेकिन ऐसा मुझे ख्याल आया था, आता था, मैं करता था और हो जाता था. तो ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस बहुत हुआ मुझे. और जैसे जैसे मैं आगे, क्योंकि पहले तो मुझे ये भी नहीं बताया था कि सेलिबसी वो फूड में क्या क्या हम वो एग्स अनियन गार्लिक ये सब मुझे बहुत लेटर बताया, क्योंकि वो लोग डरते थे कि मैं चला जाऊंगा. तो एक एक सेंटेंस में मुझे बोल दिया, हम अनियन नहीं खाते, गार्लिक नहीं खाते, हम एग्स नहीं खाते और हम सब सेलिब्रेट है, एक सेंटेंस में. सब सेलिब्रेट का मैंने सोचा. तो ये भी ये बाप सिवाय ये हो नहीं सकता.
हिंदी में बोलो आप.
हिंदी में? मैं हिंदी में नहीं बोल रहा.
नहीं, शैलेंद्र भाई को बोल रही.
सॉरी मैं है ना भूल जाता हूँ, मैं सॉरी हूँ. तो
आप लोग समझ गए ना, जब सेंटर पे बोला पवित्रता की बात आई, खाने पीने की, ओनियन.
सेलिबसी इज पवित्रता. या तो ये सब मुझे एक सेंटेंस में बता गया था, लेकिन वो भी मुझे मैंने पहले तो उसको बोल दिया कि आप लोग का सब फिर गया इधर, क्यों इसके बिना पॉपुलेशन कैसा होएगा, ये कैसा होएगा, वो कैसा होएगा, सब कितना मेरा क्वेश्चन था. लेकिन इन दी एंड ये बाप ने मदद किया, बाप सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता. तो ऐसे ऐसे करते करते 3 साल के बाद एक दफा मुझे याद है, हम वैंकूवर का सेंटर एस्टैब्लिश करते थे, वैंकूवर इन कैनेडा. तो मैं मुझे बोला गया है कि कल सुबह आप क्लास में आना और क्लास में टॉक देना,
अपना अनुभव सुनाना.
हाँ, अनुभव सुना. तो तब मैं मेरी होटल से सेंटर ड्राइव कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि आज मैं क्लास में क्या बोलूंगा. तो तब मुझे लगा कि अभी आई एम हियर, अभी मैं इधर से किधर नहीं जा सकता, मैं पीछे नहीं जा सकता हूं अभी, क्योंकि मुझे जो भी इन्वेस्टिगेट करना था वो मैंने कर लिया, मैंने बाप का टेस्ट जो करना था वो कर लिया, मैंने जो भी टेस्ट वगैरह जो भी करना था वो सब मैंने कर लिया. और उसके बाद मुझे ये फेथ आ गया था कि अभी ये ही सच है. क्योंकि जब मैं रिलीजन में था तब मैं मुझे मालूम था कि ये ट्रूथ नहीं है. तो मैं कह रहा था कि जो भी रियल भगवान है उनको मेरी सामने आके मुझे बताना है कि मैं हूं, मैं भगवान हूं, उसको आना चाहिए. और इसने यही बता दिया, यही किया, मेरी सामने आके बोल दिया मैं हूं जो तू ढूंढ रहा है, मैं हूं. तो ऐसा फाइनली फेथ आ गया 3 साल के बाद. तो ये टॉक मैंने दिया वैंकूवर सेंटर में वो दिन, तब मैंने बताया कि अब मैं ब्राह्मण हूं, मैं रियल ब्राह्मण.
थैंक यू निजार भाई, थैंक यू वेरी मच. बहुत सुंदर अनुभव। लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, आपकी फैमिली में निजार भाई आप अकेले हैं या और भी फॉलो करते हैं?
हाँ, मेरी एक सिस्टर बीके हुई, एक सिस्टर हुई और सब मेरे अगेंस्ट थे, सब, क्योंकि सबको ऐसा है कि मैं हिंदू बन गया हूं और हम मुस्लिम हैं, तो इसलिए हिंदू बनना वो तो वर्स्ट चीज है, वर्स्ट। तो लेकिन मैं स्ट्रांग इनफ हूं, मैंने बोला जो आपको सोचना है सोचो, क्योंकि तब मैं 48 साल का था, 50 साल का जब मैं ब्राह्मण बना, तो मैंने बोला मैं अभी 50 बन गया, मुझे जो करना है करने की हक है और मैं ये करने हो। तो मेरी एक सिस्टर, वो तो अभी चली गई बाप के पास, तो वो बनी बीके, लेकिन दैट्स ऑल, बाकी सब मेरे अगेंस्ट। लेकिन मैं मेरी मदर के इधर लाया था, मेरी मदर और फादर को ये 5 दफा कोर्स किया है वो लोग ने, इतना पसंद था उनको ये कोर्स, लेकिन वो समाज से बहुत डरते थे इसलिए वो नहीं, लेकिन इसको इधर ले आया था मैं बाप के सामने। तो एटलीस्ट वो सतयुग में आ जाएगी। क्योंकि अभी क्या बात है कि अभी तो हम 16,108 9 लाख ये तो सब नहीं ढूंढते, वो तो हो गया है, हम सब बन गए हैं ना, वो तो अभी तो हम 33 करोड़ को ढूंढ रहे हैं। तो ये 33 करोड़ कोई ये सब धारणा बारना नहीं करने वाले, हम देखते ये नहीं करने वाले, ये थोड़ा सुनेंगे वो करेंगे, मुझे इतना अच्छा लगता है ये सब, लेकिन वो 33 करोड़ में आ जाएगा अप टू द एंड ऑफ सिल्वर है। आप भी देखते हो ना, अभी जो नया आते हैं उसमें से थोड़े पक्का बनते हैं, लेकिन बहुत सा ऐसे आ जाते हैं ऐसे ही, है ना। तो मुझे ऐसा बिलीफ है कि अभी ये 33 करोड़ हम इकट्ठा कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वो भी हो गया है, क्योंकि अभी तो एंड भी पास में।
थैंक यू निजात भाई, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस के लिए। Thank you.